ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन में ठीक वैसे ही प्रासंगिक है जैसा कि पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में था। रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई सत्र में अपनी टिप्पणी में श्री मोदी ने आज कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि G20 ने समावेशी विकास, महिला नेतृत्व और युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की तरफ से भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक मुहिम में भारत का समर्थन रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण उत्पन्न खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से दक्षिण के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए कोई चर्चा तभी सफल हो सकती है जब वैश्विक दक्षिण की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने इस क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री सम्मेलन के दूसरे दिन सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद भारत चौथा वक्ता होगा। G20 के कार्य समूहों के साथ साथ शेरपा वार्ता के दौरान भी सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर विचार विमर्श हुआ है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की पुर्तगाल, इंडोनेशिया, इटली और नॉर्वे के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. विवेक देब रॉय की स्मृति में आज नई दिल्ली के आकाशवाणी के रंग भवन में शोक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्हें अर्थशास्त्र, संस्कृति, संस्कृत साहित्य और इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने अपने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने नीतियों और अर्थव्यवस्था के समक्ष विभिन्न मुद्दों के बारे में डॉ. देब रॉय के साथ काम किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेज रहा है। गृह मंत्री ने कल भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा स्थिति नाजुक बनी हुई है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीट और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में 150 से अधिक रैलियां की। महाराष्ट्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक ने कई रैलियां की। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। चार राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार भी आज समाप्त हो गया। मतदान बुधवार को होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की एक एक सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों को तत्काल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से कम होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस बीच प्रदूषण के कारण कई रेलगाड़ियां और उड़ान सेवाएं बाधित हुई हैं। करीब 11 उड़ानों में देरी हुई है और 7 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। उत्तर रेलवे ने बताया कि 13 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।